मरकुस मरकुस अध्याय एक। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रारंभ है। भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि
सुन, मैं अपने दूत को तुझसे पहले भेज रहा हूँ, वह तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी बनाओ।
यूहन्ना लोगों को जंगल में बपतिस्मा देते आया था। उसने लोगों से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा लेने को कहा। फिर समूचे यहूदिया देश के और यरूशलेम के लोग उसके पास गए और उसने यर्दन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पाप मान लिए थे। यूहन्ना ऊंट के बालों के बने वस्त्र पहनता था और कमर पर चमड़े की पेटी बांधे रहता था। वह टिड्डियां और जंगली शहद खाया करता था। वह इस बात का प्रचार करता था,
मेरे बाद मुझसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति आ रहा है। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि झुककर उसके जूतों के बंद तक खोल सकूं। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा।
उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु नासरत से गलील आया और यर्दन नदी में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वह जल से बाहर आया, उसने आकाश को खुले हुए देखा और देखा कि एक कबूतर के रूप में आत्मा उस पर उतर रहा है। फिर आकाशवाणी हुई,
तू मेरा पुत्र है जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ।
फिर आत्मा ने उसे तत्काल बियाबान जंगल में भेज दिया, जहाँ 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। वह जंगली जानवरों के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना को बंदी गृह में डाले जाने के बाद यीशु गलील आया और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। उसने कहा,
समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो।
जब यीशु गलील झील के किनारे से होकर जा रहा था, उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रियास को देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे इसलिए झील में जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा,
मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा।
उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे चल पड़े। फिर थोड़ा आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपनी नाव में जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें तुरंत बुलाया, सो वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उसके पीछे चल पड़े और कफरनहूम पहुंचे। फिर अगले सप्त के दिन यीशु आराधनालय में गया और लोगों को उपदेश देने लगा। उसके उपदेशों पर लोग चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें किसी शास्त्र ज्ञाता की तरह नहीं बल्कि एक अधिकारी की तरह उपदेश दे रहा था। उनकी यहूदी आराधनालय में संयोग से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें कोई दुष्ट आत्मा समाई थी। वह चिल्ला कर बोला,
नासरत के यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है।
इस पर यीशु ने झिड़कते हुए उससे कहा,
चुप रह और इसमें से बाहर निकल।
दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को झिंझोड़ा और वो जोर से चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई। हर व्यक्ति चकित हो उठा, इतना चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे,
यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश, यह दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती है।
इस तरह गलील और उसके आसपास हर कहीं यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। फिर वे आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे शमौन और अंद्रियास के घर पहुंचे। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, इसलिए उन्होंने यीशु को तत्काल उसके बारे में बताया। यीशु उसके पास गया और हाथ पकड़कर उसे उठाया। तुरंत उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा करने लगी। सूरज डूबने के बाद जब शाम हुई तो वहां के लोग सभी रोगियों और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को उसके पास लाए। सारा नगर उसके द्वार पर उमड़ पड़ा। उसने तरह तरह के रोगों से पीड़ित बहुत से लोगों को चंगा किया और बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाया, क्योंकि वे उसे जानती थी, इसलिए उसने उन्हें बोलने नहीं दिया। अंधेरा रहते सुबह सवेरे वो घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया, जहां उसने प्रार्थना की। किंतु शमौन और उसके साथी उसे ढूंढने निकले और उसे पाकर बोले,
हर व्यक्ति तेरी खोज में है।
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
हमें दूसरे नगरों में जाना ही चाहिए ताकि वहां भी उपदेश दिया जा सके, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ।
इस तरह वो गलील में सब कहीं उनकी आराधनालयों में उपदेश देता और दुष्ट आत्मा को निकालता गया। फिर एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने उसके सामने झुककर उससे विनती की और कहा,
यदि तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है।
उसे उस पर गुस्सा आया और उसने अपना हाथ फैलाकर उसे छुआ और कहा,
मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे हो जाओ।
और उसे तत्काल कोढ़ से छुटकारा मिल गया, वो पूरी तरह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कड़ी चेतावनी दी और तुरंत भेज दिया। यीशु ने उससे कहा,
देख, इसके बारे में तू किसी को कुछ नहीं बताना, किंतु याजक के पास जा और उसे अपने आप को दिखा और मूसा के नियम के अनुसार अपने ठीक होने की भेंट अर्पित कर, ताकि हर किसी को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले।
परंतु वो बाहर जाकर खुले तौर पर इस बारे में लोगों से बातचीत करके इसका प्रचार करने लगा। इससे यीशु फिर कभी नगर में खुले तौर पर नहीं जा सका, वह एकांत स्थानों में रहने लगा, किंतु लोग हर कहीं से उसके पास आते रहे। मरकुस अध्याय 2। कुछ दिनों बाद यीशु वापस कफरनहूम आया तो यह समाचार फैल गया कि वो घर में है। फिर वहां इतने लोग इकट्ठे हुए कि दरवाजे के बाहर भी तिल धरने तक की जगह न बची। जब यीशु लोगों को उपदेश दे रहा था तो कुछ लोग लकवे के मारे को चार आदमियों से उठवाकर वहां लाए, किंतु भीड़ के कारण वे उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके, इसलिए जहां यीशु था उसके ऊपर की छत का कुछ भाग उन्होंने हटाया। और जब वे खोद कर छत में एक खुला सुराख बना चुके तो उन्होंने जिस बिस्तर पर लकवे का मारा लेटा हुआ था उसे नीचे लटका दिया। उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा,
हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।
उस समय वहां कुछ धर्मशास्त्री भी बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोच रहे थे,
यह व्यक्ति इस तरह बात क्यों करता है, यह तो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर के सिवा और कौन पापों को क्षमा कर सकता है।
यीशु ने अपनी आत्मा में तुरंत यह जान लिया कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। वह उनसे बोला,
तुम अपने मन में ये बातें क्यों सोच रहे हो? सरल क्या है, इस लकवे के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपना बिस्तर उठा और चल दे? किंतु मैं तुम्हें प्रमाणित करूंगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार है कि वह पापों को क्षमा करे।
फिर यीशु ने उस लकवे के मारे से कहा,
मैं तुझसे कहता हूँ, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और अपने घर जा।
सो वह खड़ा हुआ, तुरंत अपना बिस्तर उठाया और उन सब के देखते ही देखते बाहर चला गया। यह देखकर वे अचरज में पड़ गए, उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की और बोले,
हमने ऐसा कभी नहीं देखा।
एक बार फिर यीशु झील के किनारे गया तो समूची भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु ने उन्हें उपदेश दिया। चलते हुए उसने हलफे के बेटे लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखकर उससे कहा,
मेरे पीछे आ।
सो लेवी खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। इसके बाद जब यीशु अपने शिष्यों समेत उसके घर भोजन कर रहा था तो बहुत से कर वसूलने वाले और पापी लोग भी उसके साथ भोजन कर रहे थे। इनमें बहुत से वे लोग थे जो उसके पीछे पीछे चले आए थे। जब फरीसियों के कुछ धर्मशास्त्रियों ने ये देखा कि यीशु पापियों और कर वसूलने वालों के साथ भोजन कर रहा है तो उन्होंने उसके अनुयायियों से कहा,
यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करता है?
यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा,
चंगे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होती है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ।
यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास किया करते थे। कुछ लोग यीशु के पास आए और उससे पूछने लगे,
यूहन्ना और फरीसियों के चेले उपवास क्यों रखते हैं और तेरे शिष्य उपवास क्यों नहीं रखते?
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
निश्चय ही बाराती जब तक दूल्हे के साथ हैं, उनसे उपवास रखने की उम्मीद नहीं की जाती। जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं रखते, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और तब उस समय वे उपवास करेंगे। कोई भी किसी पुराने वस्त्र में अनसिकुड़े कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, और यदि लगाता है तो कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े को भी ले बैठता है, और फटा कपड़ा पहले से भी अधिक फट जाएगा, और इसी तरह पुरानी मशक में कोई भी नई दाखरस नहीं भरता, और यदि कोई ऐसा करे तो नई दाखरस पुरानी मशक को फाड़ देगी और मशक के साथ साथ दाखरस भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए नई दाखरस नई मशकों में ही भरी जाती है।
ऐसा हुआ कि सप्त के दिन यीशु खेतों से होता हुआ जा रहा था। जाते जाते उसके शिष्य खेतों से अनाज की बालें तोड़ने लगे। इस पर फरीसी यीशु से कहने लगे,
देख सप्त के दिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं जो उचित नहीं है?
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुमने कभी दाऊद के विषय में नहीं पढ़ा कि उसने क्या किया था जब वह और उसके साथी संकट में थे और उन्हें भूख लगी थी? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब अबियातार महायाजक था तब वह परमेश्वर के मंदिर में कैसे गया और परमेश्वर को भेंट में चढ़ाई रोटियां उसने कैसे खाई, जिनका खाना महायाजक को छोड़कर किसी को भी उचित नहीं है? कुछ रोटियां उसने उनको भी दी थीं जो उनके साथ थे।
यीशु ने उनसे कहा,
शब्द मनुष्य के लिए बनाया गया है न कि मनुष्य शब्द के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द का भी प्रभु है।
मरकुस अध्याय 3। एक बार फिर यीशु यहूदी आराधनालय में गया। वहां एक व्यक्ति था जिसका एक हाथ सूख चुका था। कुछ लोग घात लगाए थे कि वह उसे ठीक करता है कि नहीं, ताकि उन्हें उस पर दोष लगाने का कोई कारण मिल जाए। यीशु ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा,
लोगों के सामने खड़ा हो जा,
और लोगों से पूछा,
सब्त के दिन किसी का भला करना उचित है या किसी को हानि पहुंचाना, किसी का जीवन बचाना ठीक है या किसी को मारना?
किंतु वे सब चुप रहे। फिर यीशु ने क्रोध में भर कर चारों ओर देखा और उनके मन की कठोरता से वो बहुत दुखी हुआ। फिर उसने उस मनुष्य से कहा,
अपना हाथ आगे बढ़ा।
उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पहले जैसा ठीक हो गया। तब फरीसी वहां से चले गए और हेरोदियों के साथ मिलकर यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे कि वे उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ झील गलील पर चला गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ भी होली, जिसमें गलील, यहूदिया, यरूशलेम, इदूमिया और यर्दन नदी के पार के तथा सूर और सैदा के लोग भी थे। लोगों की यह भीड़ उन कामों के बारे में सुनकर उसके पास आई थी जिन्हें वह करता था। भीड़ के कारण उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे उसके लिए एक छोटी नाव तैयार रखें, ताकि भीड़ उसे दबा ना ले। यीशु ने बहुत से लोगों को चंगा किया था, इसलिए बहुत से वे लोग जो रोगी थे उसे छूने के लिए भीड़ में धकेलते, रास्ता बनाते उमड़े चले आ रहे थे। जब कभी दुष्ट आत्माएं यीशु को देखती वे उसके सामने नीचे गिर पड़ती और चिल्लाकर कहती,
तू परमेश्वर का पुत्र है।
किंतु वह उन्हें चेतावनी देता कि वे सावधान रहें और इसका प्रचार न करें। फिर यीशु एक पहाड़ पर चला गया और उसने जिनको वह चाहता था अपने पास बुलाया। वे उसके पास आए, जिनमें से उसने 12 को चुना और उन्हें प्रेरित की पदवी दी। उसने उन्हें चुना ताकि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें उपदेश प्रचार के लिए भेजे, और वे दुष्ट आत्माओं को खदेड़ बाहर निकालने का अधिकार रखें। इस प्रकार उसने 12 पुरुषों की नियुक्ति की। ये थे शमौन, जिसे उसने पतरस नाम दिया, जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बुआ नरगिस रखा, जिसका अर्थ है गर्जन का पुत्र, अंद्रियास, फिलिपुप्स, बर्तुलमे, मत्ती, थोमा, हलफई का पुत्र याकूब, तद्दी और शमौन जिलोती या कनानी, तथा यहूदा इस्करियोती, जिसने आगे चलकर यीशु को धोखे से पकड़वाया था। तब वे सब घर चले गए, जहां एक बार फिर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि यीशु और उसके शिष्य खाना तक नहीं खा सके। जब उसके परिवार के लोगों ने यह सुना तो वे उसे लेने चल दिए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यरूशलेम से आए धर्मशास्त्री कहते थे,
उसमें बालजेबुल यानी शैतान समाया है।
वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की शक्ति के कारण ही दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है।
यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और दृष्टांतों का प्रयोग करते हुए उनसे कहने लगा,
शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में अपने ही विरुद्ध फूट पड़ जाए तो वह राज्य स्थिर नहीं रह सकेगा, और यदि किसी घर में अपने ही भीतर फूट पड़ जाए तो वह घर बच नहीं पाएगा। इसलिए यदि शैतान स्वयं अपना विरोध करता है और फूट डालता है तो वह बना नहीं रह सकेगा और उसका अंत हो जाएगा। किसी शक्तिशाली के मकान में घुसकर उसके माल असबाब को लूटकर निश्चय ही कोई तब तक नहीं ले जा सकता जब तक सबसे पहले वह उस शक्तिशाली व्यक्ति को बांध न दे। ऐसा करके ही वह उसके घर को लूट सकता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, लोगों को हर बात की क्षमा मिल सकती है, उनके पाप और जो निंदा बुरा भला कहना उन्होंने किए हैं वे भी क्षमा किए जा सकते हैं, किंतु पवित्र आत्मा को जो कोई भी अपमानित करेगा उसे क्षमा कभी नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी है।
यीशु ने यह इसलिए कहा था कि कुछ लोग कह रहे थे इसमें कोई दुष्ट आत्मा समाई है। तभी उसकी माँ और भाई वहाँ आए और बाहर खड़े होकर उसे भीतर से बुलाया। यीशु के चारों ओर भीड़ बैठी थी। उन्होंने उससे कहा,
देख तेरी माता, तेरे भाई और तेरी बहनें तुझे बाहर बुला रहे हैं।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं?
उसे घेर कर चारों ओर बैठे लोगों पर उसने दृष्टि डाली और कहा,
ये है मेरी माँ और मेरे भाई, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन और माँ है।
मरकुस अध्याय 4। उसने झील के किनारे उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। वहां उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, इसलिए वह झील में खड़ी एक नाव पर जा बैठा और सभी लोग झील के किनारे धरती पर खड़े थे। उसने दृष्टांत देकर उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। अपने उपदेश में उसने कहा,
सुनो, एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। तब ऐसा हुआ कि जब उसने बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे, पक्षी आए और उन्हें चुग गए। दूसरे कुछ बीज पथरीली धरती पर गिरे, जहां बहुत मिट्टी नहीं थी, वे गहरी मिट्टी न होने के कारण जल्दी ही उग आए, और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ न पकड़ पाने के कारण मुरझा गए। कुछ और बीज कांटों में जा गिरे, कांटे बड़े हुए और उन्होंने उन्हें दबा लिया, जिससे उनमें दाने नहीं पड़े। कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे, वे उगे, उनकी बढ़वार हुई और उन्होंने अनाज पैदा किया, 30 गुणी, 60 गुणी और यहां तक कि 100 गुणी अधिक फसल उतरी।
फिर उसने कहा,
जिसके पास सुनने को कान है वह सुने।
फिर जब वह अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके आसपास थे उन्होंने उससे दृष्टांतों के बारे में पूछा। यीशु ने उन्हें बताया,
तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है, किंतु उनके लिए जो बाहर के हैं सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, ताकि वे देखें और देखते ही रहें, पर उन्हें कुछ सूझे नहीं। सुने और सुनते ही रहें, पर कुछ समझे नहीं। ऐसा ना हो जाए कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं।
उसने उनसे कहा,
यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो किसी भी और दृष्टांत को कैसे समझोगे? किसान जो बोता है वह वचन है। कुछ लोग किनारे का वह मार्ग हैं जहां वचन बोया जाता है। जब वे वचन को सुनते हैं तो तत्काल शैतान आता है और जो वचन रूपी बीज उनमें बोया गया है उसे उठा ले जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पथरीली धरती में बोया बीज, जब वे वचन को सुनते हैं तो उसे तुरंत आनंद के साथ अपना लेते हैं, किंतु उसके भीतर कोई जड़ नहीं होती, इसलिए वे कुछ ही समय ठहर पाते हैं। और बाद में जब वचन के कारण उन पर विपत्ति आती है और उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, तो वे तत्काल अपना विश्वास खो बैठते हैं। और दूसरे लोग ऐसे हैं जैसे कांटों में बोए गए बीज। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, किंतु इस जीवन की चिंताएं, धन दौलत का लालच और दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा उनमें आती है और वचन को दबा लेती है, जिससे उस पर फल नहीं लग पाता। और कुछ लोग उस बीज के समान हैं जो अच्छी धरती पर बोया गया है। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। इन पर फल लगता है, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना, तो कहीं 100 गुने से भी अधिक।
फिर उसने उनसे कहा,
क्या किसी दिए को कभी इसलिए लाया जाता है कि उसे किसी बर्तन के या बिस्तर के नीचे रख दिया जाए? क्या इसे दीवट के ऊपर रखने के लिए नहीं लाया जाता? क्योंकि कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और कोई रहस्य ऐसा नहीं है जो प्रकाश में नहीं आएगा। यदि किसी के पास कान है तो वह सुने।
फिर उसने उनसे कहा,
जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे, बल्कि तुम्हारे लिए उसमें कुछ और भी जोड़ दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिस किसी के पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वह भी ले लिया जाएगा।
फिर उसने कहा,
परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए, रात को सोए और दिन को जागे और फिर बीज में अंकुर निकले, वे बढ़े और पता नहीं चले कि यह सब कैसे हो रहा है। धरती अपने आप अनाज उपजाती है, पहले अंकुर फिर बालें और फिर बालों में भरपूर अनाज। जब अनाज पक जाता है तो वह तुरंत उसे हंसिए से काटता है, क्योंकि फसल काटने का समय आ जाता है।
फिर उसने कहा,
हम कैसे बताएं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? उसकी व्याख्या करने के लिए हम किस उदाहरण का प्रयोग करें? वह राई के दाने जैसा है जो जब धरती में बोया जाता है तो बीजों में सबसे छोटा होता है, किंतु जब वह रोप दिया जाता है तो बढ़कर भूमि के सभी पौधों से बड़ा हो जाता है। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हवा में उड़ती चिड़ियाएं उसकी छाया में घोंसला बना सकती हैं।
ऐसे ही और बहुत से दृष्टांत देकर वह उन्हें वचन सुनाया करता था। वह उन्हें जितना वे समझ सकते थे बताता था। बिना किसी दृष्टांत का प्रयोग किए वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, किंतु जब अपने शिष्यों के साथ वह अकेला होता तो सब कुछ का अर्थ बताकर उन्हें समझाता। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उनसे कहा,
चलो उस पार चलें।
इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी। एक तेज बवंडर उठा, लहरें नावों पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा,
हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं?
यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा,
शांत हो जाओ, थम जाओ।
तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा,
तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है?
किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा,
आखिर यह है कौन? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं।
मरकुस अध्याय 5। फिर वे झील के उस पार गिरासेनियों के देश पहुंचे। यीशु जब नाव से बाहर आया तो कब्रों में से निकलकर तत्काल एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा का प्रवेश था उससे मिलने आया। वह कब्रों के बीच रहा करता था, उसे कोई नहीं बांध सकता था, यहां तक कि जंजीरों से भी नहीं, क्योंकि उसे जब जब हथकड़ी और बेड़ियां डाली जाती वह उन्हें तोड़ देता, जंजीरों के टुकड़े टुकड़े कर देता और बेड़ियों को चकनाचूर। कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता था। कब्रों और पहाड़ियों में रात दिन लगातार वह चीखता पुकारता अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में पुकारते हुए बोला,
सबसे महान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू मुझसे क्या चाहता है? तुझे परमेश्वर की शपथ, मेरी विनती है, तू मुझे यातना मत दे।
क्योंकि यीशु उससे कह रहा था,
ओ दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ।
तब यीशु ने उससे पूछा,
तेरा नाम क्या है?
और उसने उसे बताया,
मेरा नाम लीजन अर्थात सेना है, क्योंकि हम बहुत से हैं।
उसने यीशु से बार बार विनती की कि वह उन्हें उस क्षेत्र से ना निकाले। वहीं पहाड़ी पर उस समय सुअरों का एक बड़ा सा रेवड़ चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की,
हमें उन सुअरों में भेज दो ताकि हम उनमें समा जाए।
और उसने उन्हें अनुमति दे दी। फिर दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर सुअरों में समा गई और वह रेवड़ जिसमें कोई 2000 सुअर थे ढलवा किनारे से नीचे की तरफ लुढ़कते पुड़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा और फिर वहीं डूब मरा। फिर रेवड़ के रखवालों ने जो भाग खड़े हुए थे शहर और गांव में जाकर यह समाचार सुनाया। तब जो कुछ हुआ था उसे देखने लोग वहां आए। वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्ट आत्माएं सवार थी कपड़े पहने पूरी तरह सचेत वहां बैठा है और यह वही था जिसमें दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना समाई थी। वे डर गए। जिन्होंने वह घटना देखी थी लोगों को उसका ब्यौरा देते हुए बताया कि जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई थी उसके साथ और सुअरों के साथ क्या बीती। तब लोग उससे विनती करने लगे कि वह उनके यहाँ से चला जाए। और फिर जब यीशु नाव पर चढ़ रहा था तभी जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थी यीशु से विनती करने लगा कि वह उसे भी अपने साथ ले ले, किंतु यीशु ने उसे अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी और उससे कहा,
अपने ही लोगों के बीच घर चला जा और उन्हें वह सब बता जो प्रभु ने तेरे लिए किया है, और उन्हें यह भी बता कि प्रभु ने दया कैसे की।
फिर वह चला गया और दिख पुलिस के लोगों को बताने लगा कि यीशु ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। इससे सभी लोग चकित हुए। यीशु जब फिर उस पार गया तो उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वह झील के किनारे था। तभी यहूदी आराधनालय का एक अधिकारी जिसका नाम याईर था वहां आया और जब उसने यीशु को देखा तो वह उसके पैरों पर गिरकर आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला,
मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है, मेरी विनती है कि तू मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सिर पर रख, जिससे वह अच्छी होकर जीवित रहे।
तब यीशु उसके साथ चल पड़ा और एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ होली, जिससे वह दबा जा रहा था। वही एक स्त्री थी जिसे 12 बरस से लगातार खून जा रहा था। वह अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था सब खर्च कर चुकी थी, पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन कह रही थी,
यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी।
और फिर जहां से खून जा रहा था वह स्रोत तुरंत ही सूख गया। उसे अपने शरीर में ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया हो। यीशु ने भी तत्काल अनुभव किया जैसे उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली हो। वह भीड़ में पीछे मुड़ा और पूछा,
मेरे वस्त्र किसने छुए?
तब उसके शिष्यों ने उससे कहा,
तू देख रहा है भीड़ तुझे चारों तरफ से दबाए जा रही है और तू पूछता है मुझे किसने छुआ?
किंतु वह चारों तरफ देखता ही रहा कि ऐसा किसने किया। फिर वह स्त्री यह जानते हुए कि उसको क्या हुआ है भय से कांपती हुई सामने आई और उसके चरणों पर गिरकर सब सच सच कह डाला। फिर यीशु ने उससे कहा,
बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रह।
वह अभी बोल ही रहा था कि यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उससे बोले,
तेरी बेटी मर गई, अब तो गुरु को नाहक कष्ट क्यों देता है?
किंतु यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना और यहूदी आराधनालय के अधिकारी से वह बोला,
डर मत, बस विश्वास कर।
फिर वह सबको छोड़ केवल पतरस, याकूब और याकूब के भाई योहन्ना को साथ लेकर यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर गया। उसने देखा कि वहाँ खलबली मची है और लोग ऊंचे स्वर में रोते हुए विलाप कर रहे हैं। वह भीतर गया और उनसे बोला,
यह रोना बिलखना क्यों है? बच्ची मरी नहीं है, वह सो रही है।
इस पर उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। फिर उसने सब लोगों को बाहर भेज दिया और बच्ची के पिता, माता और जो उसके साथ थे केवल उन्हें साथ रखा। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा,
तलीता कूमी,
अर्थात
छोटी बच्ची, मैं तुझसे कहता हूँ खड़ी हो जा।
फिर छोटी बच्ची तत्काल खड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी। वह लड़की 12 साल की थी। लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे। यीशु ने उन्हें बड़े आदेश दिए कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। फिर उसने उन लोगों से कहा कि वे उस बच्ची को खाने को कुछ दें। मरकुस अध्याय 6। फिर यीशु उस स्थान को छोड़कर अपने नगर को चल दिया। उसके शिष्य भी उसके साथ थे। जब सप्त का दिन आया उसने आराधनालयों में उपदेश देना आरंभ किया। उसे सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित हुए। वे बोले,
इसको ये बातें कहाँ से मिली है? यह कैसी बुद्धिमानी है जो इसको दी गई है? यह ऐसे आश्चर्य कर्म कैसे करता है?
क्या यह वही बढ़ाई नहीं है जो मरियम का बेटा है? और क्या यह याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई नहीं है?
क्या ये जो हमारे साथ रहती हैं, इसकी बहनें नहीं हैं?
सो उन्हें उसे स्वीकार करने में समस्या हो रही थी। यीशु ने तब उनसे कहा,
किसी नबी का अपने निजी देश, संबंधियों और परिवार को छोड़ और कहीं अनादर नहीं होता।
वह कोई आश्चर्य कर्म भी नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वह कुछ रोगियों पर हाथ रख कर उन्हें चंगा कर दे। यीशु को उनके अविश्वास पर बहुत अचरज हुआ। फिर वह गांवों में लोगों को उपदेश देता घूमने लगा। उसने सभी 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और दो दो करके वह उन्हें बाहर भेजने लगा। उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया और यह निर्देश दिया
आप अपनी यात्रा के लिए लाठी के सिवा साथ कुछ न लें, न रोटी, न बिस्तर, न पटुके में पैसे। आप चप्पल तो पहन सकते हैं, किंतु कोई अतिरिक्त कुर्ती नहीं। जिस किसी घर में तुम जाओ, वहां उस समय तक ठहरो जब तक उस नगर को छोड़ो, और यदि किसी स्थान पर तुम्हारा स्वागत न हो और वहां के लोग तुम्हें न सुने, तो उसे छोड़ दो और उनके विरोध में साक्षी देने के लिए अपने पैरों से वहां की धूल झाड़ दो।
फिर वे वहां से चले गए और उन्होंने उपदेश दिया,
लोगो मन फिराओ।
उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला और बहुत से रोगियों को जैतून के तेल से अभिषेक करते हुए चंगा किया। राजा हेरोदेस ने इस बारे में सुना, क्योंकि यीशु का यश सब कहीं फैल चुका था। कुछ लोग कह रहे थे,
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और इसलिए उसमें अद्भुत शक्तियां काम कर रही हैं।
दूसरे कह रहे थे,
वह एलिया है।
कुछ और कह रहे थे,
यह नबी है या प्राचीन काल के नबियों जैसा कोई एक।
पर जब हेरोदेस ने यह सुना तो वह बोला,
यूहन्ना जिसका सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है।
क्योंकि हेरोदेस ने स्वयं ही यूहन्ना को बंदी बनाने और जेल में डालने की आज्ञा दी थी। उसने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, ऐसा किया, क्योंकि यूहन्ना हेरोदेस से कहा करता था,
यह उचित नहीं है कि तुमने अपने भाई की पत्नी से विवाह कर लिया है।
इस पर हेरोदियास उससे बैर रखने लगी थी। वह चाहती थी कि उसे मार डाला जाए, पर मार नहीं पाती थी, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना से डरता था। हेरोदेस जानता था कि यूहन्ना एक सच्चा और पवित्र पुरुष है, इसलिए वह उसकी रक्षा करता था। हेरोदेस जब यूहन्ना की बातें सुनता था तो वह बहुत घबराता था, फिर भी उसे उसकी बातें सुनना बहुत भाता था। संयोग से फिर वह समय आया जब हेरोदेस ने ऊंचे अधिकारियों, सेना के नायकों और गलील के बड़े लोगों को अपने जन्मदिन पर एक जेवनार दी। हेरोदियास की बेटी ने भीतर आकर जो नृत्य किया, उससे उसने जेवनार में आए मेहमानों और हेरोदेस को बहुत प्रसन्न किया। इस पर राजा हेरोदेस ने लड़की से कहा,
मांग जो कुछ तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा।
फिर उसने उससे शपथ पूर्वक कहा,
मेरे आधे राज्य तक जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा।
इस पर वह बाहर निकलकर अपनी माँ के पास आई और उससे पूछा,
मुझे क्या मांगना चाहिए?
फिर माँ ने बताया,
बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर।
तब वह तत्काल दौड़कर राजा के पास भीतर आई और कहा,
मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर तुरंत थाली में रख कर दे।
इस पर राजा बहुत दुखी हुआ, पर अपनी शपथ और अपनी जेवनार के मेहमानों के कारण वह उस लड़की को मना करना नहीं चाहता था। इसलिए राजा ने उसका सिर ले आने की आज्ञा देकर तुरंत एक जल्लाद भेज दिया। फिर उसने जेल में जाकर उसका सिर काटकर और उसे थाली में रखकर उस लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों ने इस विषय में सुना तो वे आकर उसका शव ले गए और उसे एक कब्र में रख दिया। फिर दिव्य संदेश का प्रचार करने वाले प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया था और सिखाया था सब उसे बताया। फिर यीशु ने उनसे कहा,
तुम लोग मेरे साथ किसी एकांत स्थान पर चलो और थोड़ा आराम करो,
क्योंकि वहां बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ था और उन्हें खाने तक का मौका नहीं मिल पाता था। इसलिए वे अकेले ही एक नाव में बैठकर किसी एकांत स्थान को चले गए। बहुत से लोगों ने उन्हें जाते देखा और पहचान लिया कि वे कौन थे, इसलिए वे सारे नगरों से धरती के रास्ते चल पड़े और उनसे पहले ही वहां जा पहुंचे। जब यीशु नाव से बाहर निकला तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। वह उनके लिए बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे थे। सो वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तब तक बहुत शाम हो चुकी थी, इसलिए उसके शिष्य उसके पास आए और बोले,
यह एक सुनसान जगह है और शाम भी बहुत हो चुकी है। लोगों को आसपास के गांव और बस्तियों में जाने दो ताकि वे अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सके।
किंतु उसने उत्तर दिया,
उन्हें खाने को तुम दो।
तब उन्होंने उससे कहा,
क्या हम जाएं और 200 दिनार की रोटियां मोल लेकर उन्हें खाने को दें?
उसने उनसे कहा,
जाओ और देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं।
पता करके उन्होंने कहा,
हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं।
फिर उसने आज्ञा दी,
हरी घास पर सबको पंक्ति में बैठा दो।
तब वे 100-100 और 50-50 की पंक्तियों में बैठ गए और उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हुए धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर लोगों को परोसने के लिए अपने शिष्यों को दी और उसने उन 2 मछलियों को भी उन सब लोगों में बांट दिया। सब ने खाया और तृप्त हुए और फिर उन्होंने बची हुई रोटियों और मछलियों से भरकर 12 टोकरियां उठाई। जिन लोगों ने रोटियां खाई उनमें केवल पुरुषों की ही संख्या 5,000 थी। फिर उसने अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़ाया ताकि जब तक वह भीड़ को विदा करे वे उससे पहले ही परले पार बैतसैदा चले जाएं। उन्हें विदा करके प्रार्थना करने के लिए वह पहाड़ी पर चला गया और जब शाम हुई तो नाव झील के बीचों बीच थी और वह अकेला धरती पर था। उसने देखा कि उन्हें नाव खेना भारी पड़ रहा था क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। लगभग रात के 4th पहर वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। वह उनके पास से निकलने को ही था। उन्होंने उसे झील पर चलते देखा, सोचा कि वह कोई भूत है और उनकी चीख निकल गई क्योंकि सभी ने उसे देखा था और वे सहम गए थे। तुरंत उसने उन्हें संबोधित करते हुए कहा,
साहस रखो, यह मैं हूँ, डरो मत।
फिर वह उनके साथ नाव पर चढ़ गया और हवा थम गई। इससे वे बहुत चकित हुए। वे रोटियों के आश्चर्य कर्म के विषय में समझ नहीं पाए थे, उनकी बुद्धि जड़ हो गई थी। झील पार करके वे गन्नेसरत पहुंचे। उन्होंने नाव बांध दी। जब वे नाव से उतरकर बाहर आए तो लोग यीशु को पहचान गए। फिर वे बीमारों को खाटों पर डाले। समूचे क्षेत्र में जहां कहीं भी उन्होंने सुना कि वह है उन्हें लिए दौड़ते फिरे। वह गांवों में, नगरों में या बस्तियों में जहां कहीं भी जाता लोग अपने बीमारों को बाजारों में रख देते और उससे विनती करते कि वह अपने वस्त्र का बस कोई सिरा ही उन्हें छू लेने दे और जो भी उसे छू पाए सब चंगे हो गए। मरकुस अध्याय 7। तब फरीसी और कुछ धर्मशास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु के आसपास एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि उसके कुछ शिष्य बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं, क्योंकि अपने पुरखों की रीति पर चलते हुए फरीसी और दूसरे यहूदी जब तक सावधानी के साथ पूरी तरह अपने हाथ नहीं धो लेते भोजन नहीं करते। ऐसे ही बाजार से लाए खाने को वे बिना धोए नहीं खाते। ऐसी ही और भी अनेक रूढ़ियां हैं जिनका वे पालन करते हैं, जैसे कटोरों, कलसों, तांबे के बर्तनों को मांजना, धोना आदि। इसलिए फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने यीशु से पूछा,
तुम्हारे शिष्य पुरखों की परंपरा का पालन क्यों नहीं करते बल्कि अपना खाना बिना हाथ धोए ही खा लेते हैं?
यीशु ने उनसे कहा,
यशायाह ने तुम जैसे कपटियों के बारे में ठीक ही भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लिखा है, ये मेरा आदर केवल होठों से करते हैं पर इनके मन मुझसे सदा दूर हैं। मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत हैं। तुमने परमेश्वर का आदेश उठाकर एक तरफ रख दिया है और तुम मनुष्यों की परंपरा का सहारा ले रहे हो।
उसने उनसे कहा,
तुम परमेश्वर के आदेशों को टालने में बहुत चतुर हो गए हो, ताकि तुम अपनी रूढ़ियों की स्थापना कर सको। उदाहरण के लिए मूसा ने कहा, अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे उसे निश्चय ही मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है कि मेरी जिस किसी वस्तु से तुम्हें लाभ पहुंच सकता था मैंने परमेश्वर को समर्पित कर दी है, तो तुम उसके माता पिता के लिए कुछ भी करना समाप्त कर देने की अनुमति देते हो। इस तरह तुम अपने बनाए रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें तुम लोग करते हो।
यीशु ने भीड़ को फिर अपने पास बुलाया और कहा,
हर कोई मेरी बात सुने और समझे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से मनुष्य के भीतर जाकर उसे अशुद्ध करे, बल्कि जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध कर सकती हैं।
फिर जब भीड़ को छोड़कर वह घर के भीतर गया तो उसके शिष्यों ने उससे इस दृष्टांत के बारे में पूछा। तब उसने उनसे कहा,
क्या तुम भी कुछ नहीं समझे? क्या तुम नहीं देखते कि कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति में बाहर से भीतर जाती है वह उसे दूषित नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके हृदय में नहीं पेट में जाती है और फिर पखाने से होकर बाहर निकल जाती है।
ऐसा कहकर उसने खाने की सभी वस्तुओं को शुद्ध कहा। फिर उसने कहा,
मनुष्य के भीतर से जो निकलता है वही उसे अशुद्ध बनाता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय के भीतर से ही बुरे विचार और अनैतिक कार्य, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल कपट, अभद्रता, ईर्ष्या, चुगलखोरी, अहंकार और मूर्खता बाहर आते हैं। ये सब बुरी बातें भीतर से आती हैं और व्यक्ति को अशुद्ध बना देती हैं।
फिर यीशु ने वह स्थान छोड़ दिया और सूर के आसपास के प्रदेश को चल पड़ा। वहां वह एक घर में गया। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके आने का पता चले, किंतु वह अपनी उपस्थिति को छुपा नहीं सका। वास्तव में एक स्त्री जिसकी लड़की में दुष्ट आत्मा का निवास था, यीशु के बारे में सुनकर तत्काल उसके पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। यह स्त्री यूनानी थी और सीरिया के फिनीकी में पैदा हुई थी। उसने अपनी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए यीशु से प्रार्थना की। यीशु ने उससे कहा,
पहले बच्चों को तृप्त हो लेने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे फेंक देना ठीक नहीं है।
स्त्री ने उससे उत्तर में कहा,
प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बच्चों के खाते समय गिरे चूरचार को खा लेते हैं।
फिर यीशु ने उससे कहा,
इस उत्तर के कारण तू चैन से अपने घर जा सकती है, दुष्टात्मा तेरी बेटी को छोड़ बाहर जा चुकी है।
सो वह घर चल दी और अपनी बच्ची को खाट पर सोते पाया। तब तक दुष्टात्मा उससे निकल चुकी थी। फिर वह सुर के इलाके से वापस आ गया और दिख पुलिस यानी 10 नगर के रास्ते सीदोन होता हुआ झील गलील पहुंचा। वहां कुछ लोग यीशु के पास एक व्यक्ति को लाए जो बहरा था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था। लोगों ने यीशु से प्रार्थना की कि वह उस पर अपना हाथ रख दे। यीशु उसे भीड़ से दूर एक तरफ ले गया। यीशु ने अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और फिर उसने थूका और उस व्यक्ति की जीभ छुई। फिर स्वर्ग की ओर ऊपर देखकर गहरी सांस भरते हुए उससे कहा,
इफ्फता,
अर्थात
खुल जा।
और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। फिर यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे किसी को कुछ ना बताएं, पर उसने लोगों को जितना रोकना चाहा उन्होंने उसे उतना ही अधिक फैलाया। लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे,
यीशु जो करता है भला करता है, यहाँ तक कि वह बहरों को सुनने की शक्ति और गूंगों को बोली देता है।
मरकुस अध्याय 8। उन्हीं दिनों एक दूसरे अवसर पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनसे कहा,
मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को मेरे साथ 3 दिन हो चुके हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज देता हूँ तो वे मार्ग में ही ढेर हो जाएंगे। कुछ तो बहुत दूर से आए हैं।
उसके शिष्यों ने उत्तर दिया,
इस जंगल में इन्हें खिलाने के लिए किसी को पर्याप्त भोजन कहाँ से मिल सकता है?
फिर यीशु ने उनसे पूछा,
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
उन्होंने उत्तर दिया,
7।
फिर उसने भीड़ को धरती पर नीचे बैठ जाने की आज्ञा दी और उसने वे 7 रोटियां ली, धन्यवाद किया और उन्हें तोड़कर बांटने के लिए अपने शिष्यों को दिया, और फिर उन्होंने भीड़ के लोगों में बांट दिया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी बांट देने को कहा। लोगों ने भरपेट भोजन किया और फिर उन्होंने बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके 7 टोकरियां भरी। वहां कोई 4,000 पुरुष रहे होंगे। फिर यीशु ने उन्हें विदा किया और वह तत्काल अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फिर फरीसी आए और उससे प्रश्न करने लगे। उन्होंने उससे कोई स्वर्गीय आश्चर्य चिन्ह प्रकट करने को कहा। उन्होंने यह उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा था। तब अपने मन में गहरी आह भरते हुए यीशु ने कहा,
इस पीढ़ी के लोग कोई आश्चर्य चिन्ह क्यों चाहते हैं? इन्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा।
फिर वह उन्हें छोड़कर वापस नाव में आ गया और झील के परले पार चला गया। यीशु के शिष्य कुछ खाने को लाना भूल गए थे। 1 रोटी के सिवाय उनके पास और कुछ नहीं था। यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा,
सावधान, फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से बचे रहो।
हमारे पास रोटी नहीं है।
इस पर वे आपस में सोच विचार करने लगे। वे क्या कह रहे हैं ये जानकर यीशु उनसे बोला,
रोटी पास नहीं होने के विषय में तुम क्यों सोच विचार कर रहे हो? क्या तुम अब भी नहीं समझते बूझते? क्या तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है? तुम्हारी आंखें हैं, क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हारे कान हैं, क्या तुम सुन नहीं सकते? क्या तुम्हें याद नहीं जब मैंने 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियों के टुकड़े किए थे और तुमने उन्हें कितनी टोकरियों में बटोरा था?
12, उन्होंने कहा।
और जब मैंने 4,000 के लिए 7 रोटियों के टुकड़े किए थे तो तुमने कितनी टोकरियां भरकर उठाई थी?
7,
उन्होंने कहा। फिर यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम अब भी नहीं समझे?
फिर वे बैतसैदा चले आए। वहां कुछ लोग यीशु के पास एक अंधे को लाए और उससे प्रार्थना की कि वह उसे छू दे। उसने अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे गांव के बाहर ले गया। उसने उसकी आंखों पर थूका, अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा,
तुझे कुछ दिखता है?
ऊपर देखते हुए उसने कहा,
मुझे लोग दिख रहे हैं, वे आसपास चलते फिरो जैसे लग रहे हैं।
तब यीशु ने उसकी आंखों पर जैसे ही फिर अपने हाथ रखे, उसने अपनी आंखें पूरी खोल दी। उसे ज्योति मिल गई थी। वह सब कुछ साफ साफ देख रहा था। फिर यीशु ने उसे घर भेज दिया और कहा,
वह गांव में न जाए।
और फिर यीशु और उसके शिष्य कैसरिया फिलिप्पी के आसपास के गांवों को चल दिए। रास्ते में यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा,
लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ?
उन्होंने उत्तर दिया,
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, पर कुछ लोग एलिया और दूसरे तुझे भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं।
फिर यीशु ने उनसे पूछा,
और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ?
पतरस ने उसे उत्तर दिया,
तू मसीह है।
फिर उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे उसके बारे में यह किसी से ना कहें, और उसने उन्हें समझाना शुरू किया,
मनुष्य के पुत्र को बहुत सी यातनाएं उठानी होंगी और बुजुर्ग प्रमुख याजक तथा धर्मशास्त्रियों द्वारा वह नकारा जाएगा और निश्चय ही वह मार दिया जाएगा और फिर 3रे दिन
वह मरे हुओं में से जी उठेगा।
उसने उनको यह साफ साफ बता दिया। फिर पतरस उसे एक तरफ ले गया और झिड़कने लगा, किंतु यीशु ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों पर दृष्टि डाली और पतरस को फटकारते हुए बोला,
शैतान, मुझसे दूर हो जा, तू परमेश्वर की बातों से सरोकार नहीं रखता बल्कि मनुष्य की बातों से सरोकार रखता है।
फिर अपने शिष्यों के साथ भीड़ को उसने अपने पास बुलाया और उनसे कहा,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना सब कुछ त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है उसे इसे खोना होगा, और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जीवन देगा उसका जीवन बचेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा खोकर सारे जगत को भी पा लेता है तो उसका क्या लाभ? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में जीवन नहीं पा सकता। यदि कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मेरे नाम और वचन के कारण लजाता है तो मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र स्वर्ग दूतों के साथ अपने परम पिता की महिमा सहित आएगा तो वह भी उसके लिए लजाएगा।
मरकुस अध्याय 9। और फिर उसने उनसे कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यहां जो खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया देखने से पहले मृत्यु का अनुभव नहीं करेंगे।
6 दिन बाद यीशु केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसने अपना रूप बदल दिया। उसके वस्त्र चमचमा रहे थे, एकदम उजले सफेद, धरती पर कोई भी धोबी जितना उजला नहीं धो सकता उससे भी अधिक उजले सफेद। एलिय्याह और मूसा भी उसके साथ प्रकट हुए, वे यीशु से बात कर रहे थे। तब पतरस बोल उठा और उसने यीशु से कहा,
हे रब्बी, यह बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ हैं। हमें 3 मंडप बनाने दे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए।
पतरस ने यह इसलिए कहा कि वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहे। वे बहुत डर गए थे। तभी एक बादल आया और उन पर छा गया। बादल में से यह कहते एक वाणी निकली,
यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो।
और तत्काल उन्होंने जब चारों ओर देखा तो यीशु को छोड़कर अपने साथ किसी और को नहीं पाया। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि उन्होंने जो कुछ देखा है उसे वे तब तक किसी को ना बताएं जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे। सो उन्होंने इस बात को अपने भीतर ही रखा, किंतु वे सोच विचार कर रहे थे कि मरकर जी उठने का क्या अर्थ है। फिर उन्होंने यीशु से पूछा,
धर्मशास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना निश्चित है?
यीशु ने उनसे कहा,
हाँ, सब बातों को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए निश्चय ही एलिय्याह पहले आएगा। किंतु मनुष्य के पुत्र के बारे में यह क्यों लिखा गया है कि उसे बहुत सी यातनाएं झेलनी होंगी और उसे घृणा के साथ नकारा जाएगा? मैं तुम्हें कहता हूँ, एलिय्याह आ चुका है और उन्होंने उसके साथ जो कुछ चाहा किया, ठीक वैसा ही जैसा उसके विषय में लिखा हुआ है।
जब वे दूसरे शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनके आसपास जमा एक बड़ी भीड़ देखी। उन्होंने देखा कि उनके साथ धर्मशास्त्री विवाद कर रहे हैं, और जैसे ही सब लोगों ने यीशु को देखा वे चकित हुए और स्वागत करने उसकी तरफ दौड़े। फिर उसने उनसे पूछा,
तुम उनसे किस बात पर विवाद कर रहे हो?
भीड़ में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया,
हे गुरु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था, उस पर एक दुष्ट आत्मा सवार है जो उसे बोलने नहीं देती। जब कभी वो दुष्ट आत्मा इस पर आती है, इसे नीचे पटक देती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और यह दांत पीसने लगता है और अकड़ जाता है। मैंने तेरे शिष्यों से इस दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने की प्रार्थना की, किंतु वे उसे नहीं निकाल सके।
फिर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा,
ओ अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? लड़के को मेरे पास ले आओ।
तब वे लड़के को उसके पास ले आए और जब दुष्ट आत्मा ने यीशु को देखा तो उनसे तत्काल लड़के को मरोड़ दिया। वह धरती पर जा पड़ा और चक्कर खा गया। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। तब यीशु ने उसके पिता से पूछा,
यह ऐसा कितने दिनों से है?
पिता ने उत्तर दिया,
यह बचपन से ही ऐसा है। दुष्ट आत्मा इसे मार डालने के लिए कभी आग में गिरा देती है तो कभी पानी में। क्या तू कुछ कर सकता है? हम पर दया कर, हमारी सहायता कर।
यीशु ने उससे कहा,
तूने कहा क्या तू कुछ कर सकता है? विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है।
तुरंत बच्चे का पिता चिल्लाया और बोला,
मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को हटा।
यीशु ने जब देखा कि भीड़ उन पर चढ़ी चली आ रही है, उसने दुष्ट आत्मा को ललकारा और उससे कहा,
ओ बच्चे को बहरा गूंगा कर देने वाली दुष्टात्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से बाहर निकला और फिर इसमें दोबारा प्रवेश मत करना।
तब दुष्टात्मा चिल्लाई, बच्चे पर भयानक दौरा पड़ा और वह बाहर निकल गई। बच्चा मरा हुआ सा दिखने लगा। बहुत लोगों ने कहा,
वह मर गया।
फिर यीशु ने लड़के को हाथ से पकड़कर उठाया और खड़ा किया। वह खड़ा हो गया। इसके बाद यीशु अपने घर चला गया। अकेले में उसके शिष्यों ने उससे पूछा,
हम इस दुष्ट आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल सके?
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
ऐसी दुष्ट आत्मा प्रार्थना के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती थी।
फिर उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। और जब वे गलील होते हुए जा रहे थे तो वह नहीं चाहता था कि वे कहां हैं इसका किसी को भी पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था। उसने उनसे कहा,
मनुष्य का पुत्र मनुष्य के ही हाथों धोखे से पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। मारे जाने के 3 दिन बाद वह जी उठेगा।
पर वे इस बात को समझ नहीं सके और यीशु से इसे पूछने में डरते थे। फिर वे कफरनहूम आए। यीशु जब घर में था उसने उनसे पूछा,
रास्ते में तुम किस बात पर सोच विचार कर रहे थे?
पर वे चुप रहे, क्योंकि वे राह चलते आपस में विचार कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है। सो वह बैठ गया। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उनसे कहा,
यदि कोई सबसे बड़ा बनना चाहता है तो उसे निश्चय ही सबसे छोटा होकर सबका सेवक बनना होगा।
और फिर एक छोटे बच्चे को लेकर उसने उनके सामने खड़ा किया। बच्चे को अपनी गोद में लेकर वह उनसे बोला,
मेरे नाम में जो कोई इनमें से किसी भी एक बच्चे को अपनाता है वह मुझे अपना रहा है, और जो कोई मुझे अपनाता है न केवल मुझे अपना रहा है बल्कि उसे भी अपना रहा है जिसने मुझे भेजा है।
यूहन्ना ने यीशु से कहा,
हे गुरु, हमने किसी को तेरे नाम से दुष्टात्माएं बाहर निकालते देखा है। हमने उसे रोकना चाहा क्योंकि वह हम में से कोई नहीं था।
किंतु यीशु ने कहा,
उसे रोको मत, क्योंकि जो कोई मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करता है वह तुरंत बाद मेरे लिए बुरी बातें नहीं कह पाएगा। वह जो हमारे विरोध में नहीं है हमारे पक्ष में है। जो इसलिए तुम्हें एक कटोरा पानी पिलाता है कि तुम मसीह के हो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं उसे इसका प्रतिफल मिले बिना नहीं रहेगा। और जो कोई इन नन्हे अबोध बच्चों में से किसी को जो मुझ में विश्वास रखते हैं पाप के मार्ग पर ले जाता है तो उसके लिए अच्छा है कि उसकी गर्दन में एक चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट डाल,
टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि दो हाथों वाला होकर नरक में डाला जाए जहां की आग कभी नहीं बुझती। यदि तेरा पैर तुझे पाप की राह पर ले जाए उसे काट दे। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि दो पैरों वाला होकर नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल दे। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि दो आंखों वाला होकर नरक में डाला जाए जहां के कीड़े कभी नहीं मरते और जहां की आग कभी बुझती नहीं। हर व्यक्ति को आग पर नमकीन बनाया जाएगा। नमक अच्छा है किंतु नमक यदि अपना नमकीनपन ही छोड़ दे तो तुम उसे दोबारा नमकीन कैसे बना सकते हो। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ शांति से रहो।
मरकुस अध्याय 10। फिर यीशु ने वह स्थान छोड़ दिया और यहूदिया के क्षेत्र में यर्दन नदी के पार आ गया। भीड़ की भीड़ फिर उसके पास आने लगी और अपनी रीति के अनुसार वह उपदेश देने लगा। फिर कुछ फरीसी उसके पास आए और उससे पूछा,
क्या किसी पुरुष के लिए उचित है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे?
उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे यह पूछा था। उसने उन्हें उत्तर दिया,
मूसा ने तुम्हें क्या नियम दिया है?
उन्होंने कहा,
मूसा ने किसी पुरुष को त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी थी।
यीशु ने उनसे कहा,
मूसा ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा इसलिए लिखी थी कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री के रूप में रचा है। इसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। इसलिए वे दो नहीं रहते बल्कि एक तन हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने मिला दिया है उसे मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए।
फिर वे जब घर लौटे तो शिष्यों ने यीशु से इस विषय में पूछा। उसने उनसे कहा,
जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से ब्याह रचाता है वह उस पत्नी के प्रति व्यभिचार करता है, और यदि वह स्त्री अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से ब्याह करती है तो वह व्यभिचार करती है।
फिर लोग यीशु के पास नन्हे मुन्ने बच्चों को लाने लगे ताकि वह उन्हें छूकर आशीष दे, किंतु उसके शिष्यों ने उन्हें झिड़क दिया। जब यीशु ने यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। फिर उसने उनसे कहा,
नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाएगा उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगा।
फिर उन बच्चों को यीशु ने गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यीशु जैसे ही अपनी यात्रा पर निकला एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा और उसके सामने झुककर उसने पूछा,
उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
यीशु ने उसे उत्तर दिया,
तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं है। तू व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर।
उस व्यक्ति ने यीशु से कहा,
गुरु, मैं अपने लड़कपन से ही इन सब बातों पर चलता रहा हूँ।
यीशु ने उस पर दृष्टि डाली और उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया। फिर उससे कहा,
तुझ में एक कमी है, जा, जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा, फिर आ और मेरे पीछे हो ले।
यीशु के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और दुखी होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनवान था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा,
उन लोगों के लिए जिनके पास धन है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है।
उसके शब्दों पर उसके शिष्य अचरज में पड़ गए, पर यीशु ने उनसे फिर कहा,
मेरे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनी के प्रवेश कर पाने से किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है।
उन्हें और अधिक अचरज हुआ। वे आपस में कहने लगे,
फिर किसका उद्धार हो सकता है।
यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा,
यह मनुष्यों के लिए असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है।
फिर पतरस उससे कहने लगा,
देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं।
यीशु ने कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माँ, बाप, बच्चों, खेत, सब कुछ को छोड़ देगा, और जो इस युग में घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक करके नहीं पाएगा, किंतु यातना के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन। और बहुत से वे जो आज सबसे अंतिम हैं, सबसे पहले हो जाएंगे, और बहुत से वे जो आज सबसे पहले हैं, सबसे अंतिम हो जाएंगे।
फिर यरूशलेम जाते हुए जब वे मार्ग में थे तो यीशु उनसे आगे चल रहा था। वे डरे हुए थे और जो उनके पीछे चल रहे थे वे भी डरे हुए थे। फिर यीशु 12 शिष्यों को अलग ले गया और उन्हें बताने लगा कि उसके साथ क्या होने वाला है।
सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य के पुत्र को धोखे से पकड़वाकर प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों को सौंप दिया जाएगा, और वे उसे मृत्यु दंड देकर गैर यहूदियों को सौंप देंगे, जो उसकी हंसी उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे। वे उसे कोड़े लगाएंगे और फिर मार डालेंगे, और फिर तीसरे दिन वह जी उठेगा।
फिर जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आए और उससे बोले,
गुरु, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ तुझसे मांगें तू हमारे लिए वह कर।
यीशु ने उनसे कहा,
तुम मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहते हो।
फिर उन्होंने उससे कहा,
हमें अधिकार दे कि तेरी महिमा में हम तेरे साथ बैठें, हम में से एक तेरे दाएं और दूसरा बाएं।
यीशु ने उनसे कहा,
तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। जो कटोरा मैं पीने को हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो, या जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ, तुम उसे ले सकते हो।
उन्होंने उससे कहा,
हम वैसा कर सकते हैं।
फिर यीशु ने उनसे कहा,
तुम वह प्याला पियोगे जो मैं पीता हूँ, तुम यह बपतिस्मा लोगे जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ, किंतु मेरे दाएं और बाएं बैठने का स्थान देना मेरा अधिकार नहीं है। ये स्थान उन्हीं पुरुषों के लिए है जिनके लिए ये तैयार किया गया है।
जब बाकी के 10 शिष्यों ने यह सुना तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रोधित हुए। फिर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा,
तुम जानते हो कि जो गैर यहूदियों के शासक माने जाते हैं उनका और उनके महत्वपूर्ण नेताओं का उन पर प्रभुत्व है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वह तुम सब का दास बने, और जो तुम में प्रधान बनना चाहता है वह सब का सेवक बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तक सेवा कराने नहीं आया है बल्कि सेवा करने आया है, और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया है।
फिर वे यरीहो आए, और जब यीशु अपने शिष्यों और एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो को छोड़कर जा रहा था तो बर्तिमाई अर्थ तिमाई का पुत्र नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने सुना कि वह नासरी यीशु है तो उसने ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर कहना शुरू किया,
दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर।
बहुत से लोगों ने डांट कर उसे चुप रहने को कहा, पर वह और भी ऊंचे स्वर में पुकारने लगा,
दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर।
तब यीशु रुका और बोला,
उसे मेरे पास लाओ।
सो उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा,
हिम्मत रह, खड़ा हो, वह तुझे बुला रहा है।
वह अपना कोट फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। फिर यीशु ने उससे कहा,
तू मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहता है?
अंधे ने उससे कहा,
हे रब्बी, मैं फिर से देखना चाहता हूँ।
तब यीशु बोला,
जा, तेरे विश्वास से तेरा उद्धार हुआ।
फिर वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। मरकुस अध्याय 11। फिर जब वे यरूशलेम के पास जैतून पर्वत पर बैतफगे और बेतनिय्याह पहुंचे, तो यीशु ने अपने शिष्यों में से दो को यह कहकर सामने के गांव में भेजा,
जाओ, वहां जैसे ही तुम गांव में प्रवेश करोगे, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर पहले कभी कोई नहीं चढ़ा, उसे खोलकर यहां ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम यह क्यों कर रहे हो, तो तुम कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, फिर वह इसे तुरंत ही वापस लौटा देगा।
तब वे वहां से चल पड़े और उन्होंने खुली गली में एक द्वार के पास गधी के बछेरे को बंधा पाया, सो उन्होंने उसे खोल लिया। कुछ व्यक्तियों ने जो वहां खड़े थे उनसे पूछा,
इस गधी के बछड़े को खोलकर तुम क्या कर रहे हो?
उन्होंने उनसे वही कहा जो यीशु ने बताया था। इस पर उन्होंने उन्हें जाने दिया। फिर वे उस गधी के बछेरे को यीशु के पास ले आए। उन्होंने उस पर अपने वस्त्र डाल दिए। फिर यीशु उस पर बैठ गया। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और बहुतों ने खेतों से टहनियां काट कर वहां बिछा दी। वे लोग जो आगे थे और वे भी जो पीछे थे पुकार रहे थे,
होशन्ना, वह धन्य है जो प्रभु के नाम पर आ रहा है, धन्य है हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, होशन्ना स्वर्ग में।
फिर उसने यरूशलेम में प्रवेश किया और मंदिर में गया। उसने चारों ओर की हर वस्तु को देखा, क्योंकि शाम को बहुत देर हो चुकी थी। वह बारह शिष्यों के साथ बेतनिय्याह को चला गया। अगले दिन जब वे बेतनिय्याह से निकल रहे थे, उसे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी दूर पर उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। यह देखने के लिए वह पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं उसे उसी पर कुछ मिल जाए, किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसे पत्तों के सिवाय कुछ ना मिला, क्योंकि अंजीरों की ऋतु नहीं थी। तब उसने पेड़ से कहा,
अब आगे से कभी कोई तेरा फल न खाए।
उसके शिष्यों ने यह सुना। फिर वे यरूशलेम को चल पड़े। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, तो यीशु ने उन लोगों को जो मंदिर में ले बेच कर रहे थे बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने पैसे का लेन देन करने वालों की चौकियां उलट दी और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए, और उसने मंदिर में से किसी को कुछ भी ले जाने नहीं दिया। फिर उसने शिक्षा देते हुए उनसे कहा,
क्या शास्त्रों में यह नहीं लिखा है, मेरा घर सभी जाति के लोगों के लिए प्रार्थना गृह कहलाएगा, किंतु तुमने उसे चोरों का अड्डा बना दिया है।
जब प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने यह सुना, तो वे उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, क्योंकि भीड़ के सभी लोग उसके उपदेश से चकित थे, इसलिए वे उससे डरते थे। फिर जब शाम हुई तो वे नगर से बाहर निकले। अगले दिन सुबह जब यीशु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक से सूखा देखा। तब पतरस ने याद करते हुए यीशु से कहा,
हे रब्बी, देख, जिस अंजीर के पेड़ को तूने शाप दिया था वह सूख गया है।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, तू उखड़कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह न हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे विश्वास करो, वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें भी क्षमा कर दे।
फिर वे यरूशलेम लौट आए। यीशु जब मंदिर में टहल रहा था तो प्रमुख याजक, धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता उसके पास आए और बोले,
तू इन कार्यों को किस अधिकार से करता है? इन्हें करने का अधिकार तुझे किसने दिया है?
यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि मुझे उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं यह कार्य किस अधिकार से करता हूँ। जो बपतिस्मा यूहन्ना दिया करता था, वह उसे स्वर्ग से प्राप्त हुआ था या मनुष्य से? मुझे उत्तर दो।
वे यीशु के प्रश्न पर यह कहते हुए आपस में विचार करने लगे,
यदि हम यह कहते हैं यह उसे स्वर्ग से प्राप्त हुआ था तो यह कहेगा, तो तुम उसका विश्वास क्यों नहीं करते? किंतु यदि हम यह कहते हैं वह मनुष्य से प्राप्त हुआ था तो लोग हम पर ही क्रोध करेंगे।
वे लोगों से बहुत डरते थे, क्योंकि सभी लोग यह मानते थे कि यूहन्ना वास्तव में एक भविष्यवक्ता है। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया,
हम नहीं जानते।
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं ये कार्य किस अधिकार से करता हूं।
मरकुस अध्याय 12। यीशु दृष्टांत कथाओं का सहारा लेते हुए उनसे कहने लगा,
एक व्यक्ति ने अंगूरों का एक बगीचा लगाया और उसके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। फिर अंगूर के रस के लिए एक कुंड बनाया और फिर उसे कुछ किसानों को किराए पर देकर यात्रा पर निकल पड़ा। फिर अंगूर पकने की ऋतु में उसने उन किसानों के पास अपना एक दास भेजा, ताकि वह किसानों से बगीचे में जो अंगूर हुए हैं उनमें से उसका हिस्सा ले आए। किंतु उन्होंने पकड़कर उस दास की पिटाई की और खाली हाथों वहां से भगा दिया। उसने एक और दास उनके पास भेजा, उन्होंने उसके सिर पर वार करते हुए उसका बुरी तरह अपमान किया। उसने फिर एक और दास भेजा जिसकी उन्होंने हत्या कर डाली। उसने ऐसे ही और भी अनेक दास भेजे जिनमें से उन्होंने कुछ की पिटाई की और कितनों को मार डाला। अब उसके पास भेजने को अपना प्यारा पुत्र ही बचा था। आखिरकार उसने उसे भी उनके पास यह कहते हुए भेज दिया, वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे ही। उन किसानों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उसका उत्तराधिकारी है, आओ इसे मार डालें, इससे उत्तराधिकार हमारा हो जाएगा। इस तरह उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और अंगूरों के बगीचे से बाहर फेंक दिया। इस पर अंगूर के बगीचे का मालिक क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को मार डालेगा और बगीचा दूसरों को दे देगा। क्या तुमने शास्त्र का यह वचन नहीं पढ़ा है, वह पत्थर जिसे कारीगरों ने बेकार माना वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु ने किया जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है।
वे यह समझ गए थे कि उसने जो दृष्टांत कहा है उनके विरोध में था, सो वे उसे बंदी बनाने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, पर लोगों से वे डरते थे इसलिए उसे छोड़कर चले गए। तब उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसे बातों में फंसाने के लिए उसके पास भेजा। वे उसके पास आए और बोले,
गुरु, हम जानते हैं कि तू बहुत ईमानदार है और तू इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तू मनुष्यों की हैसियत या रुतबे पर ध्यान दिए बिना प्रभु के मार्ग की सच्ची शिक्षा देता है। सो बता, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम उसे कर चुकाएं या न चुकाएं?
यीशु उनकी चाल समझ गया। उसने उनसे कहा,
तुम मुझे क्यों परखते हो? एक दीनार लाओ ताकि मैं उसे देख सकूं।
सो वे दीनार ले आए। फिर यीशु ने उनसे पूछा,
इस पर किसका चेहरा और नाम अंकित है?
उन्होंने कहा,
कैसर का।
तब यीशु ने उन्हें बताया,
जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो।
तब वे बहुत चकित हुए। फिर कुछ सदुकी जो पुनर्जीवन को नहीं मानते उसके पास आए और उन्होंने उससे पूछा,
हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई मर जाए और उसकी पत्नी से कोई बच्चा न हो तो उसके भाई को चाहिए कि वह उसे ब्याह ले और फिर अपने भाई के वंश को बढ़ाए। एक बार की बात है कि 7 भाई थे, सबसे बड़े भाई ने ब्याह किया और बिना कोई बच्चा छोड़े वह मर गया। फिर दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया पर वह भी बिना किसी संतान के ही मर गया। तीसरे भाई ने भी वैसा ही किया, 7 में से किसी ने भी कोई बच्चा नहीं छोड़ा। आखिरकार वह स्त्री भी मर गई। मौत के बाद जब वे लोग फिर जी उठेंगे तो बता वह स्त्री किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वे 7 ही उसे अपनी पत्नी के रूप में रख चुके थे।
यीशु ने उनसे कहा,
तुम न तो शास्त्रों को जानते हो और न ही परमेश्वर की शक्ति को। निश्चय ही क्या यही कारण नहीं है जिससे तुम भटक गए हो? क्योंकि वे लोग जब मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उनके विवाह नहीं होंगे, बल्कि वे स्वर्ग दूतों के समान स्वर्ग में होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी के बारे में जो लिखा गया है नहीं पढ़ा? वहां परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। तुम लोग बहुत बड़ी भूल में पड़े हो।
फिर एक यहूदी धर्मशास्त्री आया और उसने उन्हें वाद विवाद करते सुना। यह देखकर कि यीशु ने उन्हें किस अच्छे ढंग से उत्तर दिया है, उसने यीशु से पूछा,
सबसे अधिक महत्वपूर्ण आदेश कौन सा है?
यीशु ने उत्तर दिया,
सबसे महत्वपूर्ण आदेश यह है, हे इसराइल सुन, केवल हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। समूचे मन से, समूचे जीवन से, समूची बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से तुझे प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। इन आदेशों से बड़ा और कोई आदेश नहीं है।
इस पर यहूदी धर्मशास्त्री ने उससे कहा,
गुरु तूने ठीक कहा, तेरा यह कहना ठीक है कि परमेश्वर एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। अपने समूचे मन से, सारी समझ बूझ से, सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना और अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार रखना, सारी बलियों और समर्पित भेंटों से जिनका विधान किया गया है अधिक महत्वपूर्ण है।
जब यीशु ने देखा कि उस व्यक्ति ने समझदारी के साथ उत्तर दिया है तो वह उससे बोला,
तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है।
इसके बाद किसी और ने उससे कोई और प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए कहा,
धर्मशास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा था, प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु मसीह से कहा, मेरी दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों तले ना कर दूं। दाऊद स्वयं उसे प्रभु कहता है, फिर मसीह दाऊद का पुत्र कैसे हो सकता है?
एक बड़ी भीड़ प्रसन्नता के साथ उसे सुन रही थी। अपने उपदेश में उसने कहा,
धर्म शास्त्रियों से सावधान रहो, वे अपने लंबे चोगे पहने हुए इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। बाजारों में अपने को नमस्कार करवाना उन्हें भाता है और आराधनालयों में वे महत्वपूर्ण आसनों पर बैठना चाहते हैं। वे जेवनारों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पाने की इच्छा रखते हैं। वे विधवाओं की संपत्ति हड़प जाते हैं। दिखावे के लिए वे लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलते हैं। इन लोगों को कड़े से कड़ा दंड मिलेगा।
यीशु दान पात्र के सामने बैठा हुआ देख रहा था कि लोग दान पात्र में किस तरह धन डाल रहे हैं। बहुत से धनी लोगों ने बहुत सा धन डाला। फिर वहां एक गरीब विधवा आई और उसने उसमें दो दमड़ियां डाली जो एक पैसे के बराबर भी नहीं थी। फिर उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, धनवानों द्वारा दान पात्र में डाले गए प्रचुर दान से इस निर्धन विधवा का यह दान कहीं महान है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ उनके पास फालतू था उसमें से दान दिया, किंतु इसने अपनी दीनता में जो कुछ इसके पास था सब कुछ दे डाला। इसके पास इतना सा ही था जो इसके जीवन का सहारा था।
मरकुस अध्याय 13। जब वह मंदिर से जा रहा था, उसके एक शिष्य ने उससे कहा,
गुरु देख, ये पत्थर और भवन कितने अनोखे हैं।
इस पर यीशु ने उनसे कहा,
तू इन विशाल भवनों को देख रहा है? यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा, एक एक पत्थर ढहा दिया जाएगा।
जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो उससे पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास ने अकेले में पूछा,
हमें बता, यह सब कुछ कब घटेगा? जब यह सब कुछ पूरा होने को होगा तो उस समय कैसे संकेत होंगे?
इस पर यीशु कहने लगा,
सावधान, कोई तुम्हें छलने न पाए। मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और दावा करेंगे मैं वही हूँ, वे बहुतों को छलेंगे। जब तुम युद्धों या युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनो तो घबराना मत, ऐसा तो होगा ही किंतु अभी अंत नहीं है। एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़े होंगे। बहुत से स्थानों पर भूचाल आएंगे और अकाल पड़ेंगे, वे पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। अपने बारे में सचेत रहो, वे लोग तुम्हें न्यायालयों के हवाले कर देंगे और फिर तुम्हें उनके आराधनालयों में पीटा जाएगा, और मेरे कारण तुम्हें शासकों और राजाओं के आगे खड़ा होना होगा ताकि उन्हें कोई प्रमाण मिल सके। किंतु यह आवश्यक है कि पहले सब किसी को सुसमाचार सुना दिया जाए, और जब कभी वे तुम्हें पकड़कर तुम पर मुकदमा चलाएं, तो पहले से ही यह चिंता मत करने लगना कि तुम्हें क्या कहना है। उस समय जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही बोलना, क्योंकि ये तुम नहीं हो जो बोल रहे हो, बल्कि बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है। भाई भाई को धोखे से पकड़वा कर मरवा डालेगा, पिता पुत्र को धोखे से पकड़वाएगा और बाल बच्चे अपने माता पिता के विरोध में खड़े होकर उन्हें मरवाएंगे। मेरे कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। जब तुम भयानक विनाशकारी वस्तुओं को जहां वे नहीं होनी चाहिए वहां खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले कि इसका अर्थ क्या है। तब जो लोग यहूदिया में हों उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए, और जो लोग अपने घर की छत पर हों वे घर में भीतर जाकर कुछ भी लाने के लिए नीचे न उतरें, और जो बाहर मैदान में हों वह पीछे मुड़कर अपना वस्त्र तक न लें। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे, वे दिन बहुत भयानक होंगे। प्रार्थना करो कि यह सब कुछ सर्दियों में न हो, उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है आज तक न कभी आई है और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटा न दिया होता तो कोई भी नहीं बचता, किंतु उन चुने हुए व्यक्तियों के कारण जिन्हें उसने चुना है उसने उस समय को कम किया है। उन दिनों यदि कोई तुमसे कहे, देखो यह रहा मसीह या वह रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता दिखाई पड़ने लगेंगे और वे ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दर्शाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी चक्कर में डाल दें। इसलिए तुम सावधान रहना, मैंने समय से पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है। उन दिनों यातना के उस काल के बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी,
आकाश से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को महाशक्ति और महिमा के साथ बादलों में प्रकट होते देखेंगे। फिर वह अपने दूतों को भेजकर चारों दिशाओं, पृथ्वी के एक छोर से आकाश के दूसरे छोर तक सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो कि जब उसकी टहनियां कोमल हो जाती हैं और उस पर कोंपलें फूटने लगती हैं, तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म ऋतु आने को है। ऐसे ही जब तुम यह सब कुछ घटित होते देखो, तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि निश्चित रूप से इन लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे, किंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। उस दिन या उस घड़ी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, न स्वर्ग में दूतों को और न अभी मनुष्य के पुत्र को, केवल परमपिता परमेश्वर जानता है। सावधान जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आ जाएगा। वह ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाते हुए सेवकों के ऊपर अपना घर छोड़ जाए और हर एक को उसका अपना अपना काम दे जाए, तथा चौकीदार को यह आज्ञा दे कि वह जागता रहे। इसलिए तुम भी जागते रहो, क्योंकि घर का स्वामी न जाने कब आ जाए। सांझ गए, आधी रात, मुर्गे की बांक देने के समय या फिर दिन निकले, यदि वह अचानक आ जाए तो ऐसा करो जिससे वह तुम्हें सोते ना पाए। जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो।
मरकुस अध्याय 14। फसा पर्व और बिना खमीर की रोटी का उत्सव आने से 2 दिन पहले की बात है कि प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे चालाकी के साथ उसे बंदी बनाया जाए और मार डाला जाए। वे कह रहे थे,
किंतु यह हमें पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई फसाद खड़ा करे।
जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के एक पात्र में शुद्ध बाल छड़ का इत्र लिए आई। उसने उस पात्र को तोड़ा और इत्र को यीशु के सिर पर उड़ेल दिया। इससे वहां कुछ लोग बिगड़कर आपस में कहने लगे,
इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई है? यह इत्र 300 दिनारी से भी अधिक में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को कंगालों में बांटा जा सकता था।
उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की। तब यीशु ने कहा,
उसे क्यों तंग करते हो? छोड़ो उसे, उसने तो मेरे लिए एक मनोहर काम किया है, क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, सो तुम जब चाहो उनकी सहायता कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इस स्त्री ने वही किया जो वह कर सकती थी। उसने समय से पहले ही गाड़े जाने के लिए मेरे शरीर पर सुगंध छिड़क कर उसे तैयार किया है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहीं इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी।
तब यहूदा इस्करियोती, जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजक के पास यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए गया। वे उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे धन देने का वचन दिया। इसलिए फिर यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव से 1 दिन पहले, जब फसा मेमने की बलि दी जाया करती थी, उसके शिष्यों ने उससे पूछा,
तू क्या चाहता है कि हम कहां जाकर तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी करें?
तब उसने अपने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा,
नगर में जाओ, जहां तुम्हें एक व्यक्ति जल का घड़ा लिए मिले उसके पीछे हो लेना, फिर जहां कहीं भी वह भीतर जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा है भोजन का मेरा वह कमरा कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह का खाना खा सकूँ। फिर वह तुम्हें ऊपर का एक बड़ा सजा सजाया तैयार कमरा दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो।
तब उसके शिष्य वहां से नगर को चल दिए, जहां उन्होंने हर बात वैसी ही पाई जैसी उनसे यीशु ने कही थी। तब उन्होंने फसा का खाना तैयार किया है। दिन ढले, अपने 12 शिष्यों के साथ यीशु वहां पहुंचा। जब वे बैठे खाना खा रहे थे, तब यीशु ने कहा,
मैं सत्य कहता हूँ, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है वही मुझे धोखे से पकड़वाएगा।
इससे वे दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे,
निश्चय ही वह मैं नहीं हूँ।
तब यीशु ने उनसे कहा,
वह 12 में से वही एक है जो मेरे साथ एक ही थाली में खाता है। मनुष्य के पुत्र को तो जाना ही है जैसा कि उसके बारे में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि वह पैदा ही न हुआ होता।
जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, रोटी को तोड़ा और उसे उनको देते हुए कहा,
लो यह मेरी देह है।
फिर उसने कटोरा उठाया, धन्यवाद किया और उसे उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। तब यीशु बोला,
यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा का आरंभ है, यह बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अब मैं उस दिन तक दाख मधु को चखूंगा नहीं, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया दाख मधु न पीऊं।
तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। यीशु ने उनसे कहा,
तुम सबका विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं गड़ेरिये को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा।
तब पतरस बोला,
चाहे सब अपना विश्वास खो बैठे पर मैं नहीं खोऊंगा।
इस पर यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के 2 बार बांक देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा।
इस पर पतरस ने और भी बल देते हुए कहा,
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नकारूंगा नहीं।
तब बाकी सब शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा। फिर वे एक ऐसे स्थान पर आए जिसे गतसमने कहा जाता था। वहां यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
जब तक मैं प्रार्थना करता हूँ तुम यहीं बैठो।
और पतरस, याकूब और यूहन्ना को वह अपने साथ ले गया। वह बहुत दुखी और व्याकुल हो रहा था। उसने उनसे कहा,
मेरा मन दुखी है जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे, तुम यहीं ठहरो और सावधान रहो।
फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। फिर उसने कहा,
हे परम पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, इस कटोरे को मुझसे दूर कर, फिर जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वह नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही कर।
फिर वह लौटा तो उसने अपने शिष्यों को सोते देखकर पतरस से कहा,
शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी जाग नहीं सका? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो चाहती है किंतु शरीर निर्बल है।
वह फिर चला गया और वैसे ही वचन बोलते हुए उसने प्रार्थना की। जब वह दोबारा लौटा तो उसने उन्हें फिर सोते पाया। उनकी आंखों में नींद भरी थी, उन्हें सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या उत्तर दें। वह तीसरी बार फिर लौट कर आया और उनसे बोला,
क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? अच्छा तो सोते रहो, वह घड़ी आ पहुंची है जब मनुष्य का पुत्र धोखे से पकड़वाया जाकर पापियों के हाथों सौंपा जा रहा है। खड़े हो जाओ, आओ चलें, देखो यह आ रहा है, मुझे धोखे से पकड़वाने वाला व्यक्ति।
यीशु बोल ही रहा था कि उसके 12 शिष्यों में से एक यहूदा वहां दिखाई पड़ा। उसके साथ लाठियां और तलवारें लिए एक भीड़ थी, जिसे याजकों, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भेजा था। धोखे से पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत बता रखा था,
जिसे मैं चूमूं वही वह है, उसे हिरासत में ले लेना और पकड़कर सावधानी से ले जाना।
सो जैसे ही यहूदा वहां आया, उसने यीशु के पास जाकर कहा,
रब्बी,
और उसे चूम लिया। फिर तुरंत उन्होंने उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया। उसके एक शिष्य ने, जो उसके पास ही खड़ा था, अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के एक दास पर चला दी, जिससे उसका कान कट गया। फिर यीशु ने उनसे कहा,
क्या मैं कोई अपराधी हूँ जिसे पकड़ने तुम लाठी तलवार लेकर आए हो? हर दिन मंदिर में उपदेश देते हुए मैं तुम्हारे साथ ही था, किंतु तुमने मुझे नहीं पकड़ा। अब यह हुआ ताकि शास्त्र का वचन पूरा हो।
फिर उसके सभी शिष्य उसे अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। अपनी वस्त्र रहित देह पर चादर लपेटे एक नौजवान उसके पीछे आ रहा था। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, किंतु वह अपनी चादर छोड़कर नंगा भाग खड़ा हुआ। वे यीशु को प्रधान याजक के पास ले गए। फिर सभी प्रमुख याजक, बुजुर्ग यहूदी नेता और धर्मशास्त्री इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते हुए उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और वहां पहरेदारों के साथ बैठकर आग तापने लगा। सारी यहूदी महासभा और प्रमुख याजक यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई प्रमाण ढूंढने का यत्न कर रहे थे, पर ढूंढ नहीं पाए। बहुतों ने उसके विरोध में झूठी गवाहियां दी, पर वे गवाहियां आपस में विरोधी थीं। फिर कुछ लोग खड़े हुए और उसके विरोध में झूठी गवाही देते हुए कहने लगे,
हमने इसे यह कहते सुना है, मनुष्यों के हाथे बने इस मंदिर को मैं ध्वस्त कर दूंगा और फिर 3 दिन के भीतर दूसरा बना दूंगा जो हाथों से बना नहीं होगा।
किंतु इसमें भी उनकी गवाहियां एक सी नहीं थी। तब उनके सामने महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा,
ये लोग तेरे विरोध में ये क्या गवाहियां दे रहे हैं? क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना?
इस पर यीशु चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा,
क्या तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है?
यीशु बोला,
मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों में आते देखोगे।
महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा,
हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? तुमने ये अपमानपूर्ण बातें कहते हुए इसे सुना, अब तुम्हारा क्या विचार है?
उन सब ने उसे अपराधी ठहराते हुए कहा,
इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए।
तब कुछ लोग उस पर थूकते, कुछ उसका मुंह ढकते, कुछ घूंसे मारते और कुछ हंसी उड़ाते कहने लगे,
भविष्यवाणी कर।
और फिर पहरेदारों ने पकड़कर उसे पीटा। पतरस अभी नीचे आंगन ही में बैठा था कि महायाजक की एक दासी आई। जब उसने पतरस को वहां आग तापते देखा तो बड़े ध्यान से उसे पहचान कर बोली,
तू भी तो उस यीशु नाथरी के ही साथ था।
किंतु पतरस मुकर गया और कहने लगा,
मैं नहीं जानता या मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कह रही है।
यह कहते हुए वह डेवड़ी तक चला गया और मुर्गी ने बांग दी। उस दासी ने जब उसे दोबारा देखा तो वहां खड़े लोगों से फिर कहने लगी,
यह व्यक्ति भी उन्हीं में से एक है।
पतरस फिर मुकर गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां खड़े लोगों ने पतरस से कहा,
निश्चय ही तू उनमें से एक है, क्योंकि तू भी गलील का है।
तब पतरस अपने को धिक्कारने और कसमें खाने लगा,
जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता।
तत्काल मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी पतरस को उसी समय वे शब्द याद हो आए जो उससे यीशु ने कहे थे,
इससे पहले कि मुर्गा दो बार बांग दे तू मुझे तीन बार नकारेगा।
तब पतरस जैसे टूट गया, वह फूट फूट कर रोने लगा। मरकुस अध्याय 15। जैसे ही सुबह हुई, महायाजकों, धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और समूची यहूदी महासभा ने एक योजना बनाई। वे यीशु को बंधवा कर ले गए और उसे राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा,
क्या तू यहूदियों का राजा है?
यीशु ने उत्तर दिया,
ऐसा ही है, तू स्वयं कह रहा है।
फिर प्रमुख याजकों ने उस पर बहुत से दोष लगाए। पिलातुस ने उससे फिर पूछा,
क्या तुझे उत्तर नहीं देना है? देख, वे कितनी बातों का दोष तुझ पर लगा रहे हैं।
किंतु यीशु ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस को बहुत अचरज हुआ। फसा पर्व के अवसर पर पिलातुस किसी भी एक बंदी को, जिसे लोग चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक बंदी उन बलवाइयों के साथ जेल में था जिन्होंने दंगे में हत्या की थी। लोग आए और पिलातुस से कहने लगे कि वह जैसा सदा से उनके लिए करता आया है वैसा ही करे। पिलातुस ने उनसे पूछा,
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों को राजा को छोड़ दूं?
पिलातुस ने यह इसलिए कहा कि वह जानता था कि प्रमुख याजकों ने ईर्ष्या द्वेष के कारण ही उसे पकड़वाया है। किंतु प्रमुख याजकों ने भीड़ को उकसाया कि वह उसके बजाय उनके लिए बरअब्बा को ही छोड़े। किंतु पिलातुस ने उनसे बातचीत करके फिर पूछा,
जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? बताओ तुम क्या चाहते हो?
उत्तर में ये चिल्लाए,
उसे क्रूस पर चढ़ा दो।
तब पिलातुस ने उनसे पूछा,
क्यों, उसने ऐसा क्या अपराध किया है?
पर उन्होंने और अधिक चिल्लाकर कहा,
उसे क्रूस पर चढ़ा दो।
पिलातुस भीड़ को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। फिर सिपाही उसे रोम के राज्यपाल निवास में ले गए। उन्होंने सिपाहियों की पूरी पलटन को बुला लिया। फिर उन्होंने यीशु को बैंजनी रंग का वस्त्र पहनाया और कांटों का एक ताज बनाकर उसके सिर पर रख दिया। फिर उसे सलामी देने लगे,
यहूदियों के राजा का स्वागत है।
वे उसके सिर पर सरकंडे मारते जा रहे थे, वे उस पर थूक रहे थे और घुटनों के बल झुककर वे उसके आगे नमन करते जाते थे। इस तरह जब वे उसकी खिल्ली उड़ा चुके तो उन्होंने उसका बैंजनी वस्त्र उतारा और उसे उसके अपने कपड़े पहना दिए और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले गए। उन्हें कुरैन का रहने वाला शिमोन नाम का एक व्यक्ति रास्ते में मिला। वह गांव से आ रहा था। वह सिकंदर और रुफूस का पिता था। सिपाहियों ने उस पर दबाव डाला कि वह यीशु का क्रूस उठाकर चले। फिर वे यीशु को गुलगुता, जिसका अर्थ है खोपड़ी स्थान, नामक स्थान पर ले गए। तब उन्होंने उसे लोहबान मिला हुआ दाख रस पीने को दिया, किंतु उसने उसे नहीं लिया। फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके वस्त्र उन्होंने बांट लिए और यह देखने के लिए कि कौन क्या ले, उन्होंने पासे फेंके। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उसके विरुद्ध एक लिखित अभियोग पत्र उस पर अंकित था, यहूदियों का राजा। उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। उसके पास से निकलते हुए लोग उसका अपमान कर रहे थे, अपना सिर नचा नचा कर वे कहते थे,
अरे वाह, तू वही है जो मंदिर को ध्वस्त कर 3 दिन में फिर बनाने वाला था? अब क्रूस पर से नीचे उतर और अपने आप को तो बचा ले।
इसी तरह प्रमुख याचकों और धर्मशास्त्रियों ने भी यीशु की खिल्ली उड़ाई। वे आपस में कहने लगे,
यह औरों का उद्धार करता था पर स्वयं अपने को नहीं बचा सकता है। अब इस मसीह और इज़राइल के राजा को क्रूस पर से नीचे तो उतरने दे, ताकि हम यह देखकर उसमें विश्वास कर सकें।
उन दोनों ने भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसका अपमान किया। फिर समूची धरती पर दोपहर तक अंधकार छाया रहा। दिन के 3 बजे ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा,
इलोई इलोई लमा शबक्तनी,
अर्थात
मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया।
जो पास में खड़े थे उनमें से कुछ ने जब ये सुना तो वे बोले,
सुनो यह एलिया को पुकार रहा है।
तब एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को पीने के लिए दिया और कहा,
ठहरो, देखते हैं कि इसे नीचे उतारने के लिए एलिया आता है कि नहीं।
फिर यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा और प्राण त्याग दिए। तभी मंदिर का पट ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। सेना के एक अधिकारी ने जो यीशु के सामने खड़ा था उसे पुकारते हुए सुना और देखा कि उसने प्राण कैसे त्यागे। उसने कहा,
यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था।
कुछ स्त्रियां वहां दूर से खड़ी देख रही थी, जिनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब यीशु गलील में था तो ये स्त्रियां उसकी अनुयायी थी और उसकी सेवा करती थी। वहीं और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम तक आई थीं। शाम हो चुकी थी और क्योंकि सब्त के पहले का वह तैयारी का दिन था, इसलिए अरिमतिया का यूसुफ आया। वह यहूदी महासभा का सम्मानित सदस्य था और परमेश्वर के राज्य के आने की बाट जोहता था। साहस के साथ वह पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का शव मांगा। पिलातुस को बड़ा अचरज हुआ कि वह इतनी जल्दी कैसे मर गया। उसने सेना के अधिकारी को बुलाया और उससे पूछा, क्या उसको मरे काफी देर हो चुकी है? फिर जब उसने सेना नायक से ब्यौरा सुन लिया तो यूसुफ को शव दे दिया। फिर यूसुफ ने सन के उत्तम रेशमों का बना थोड़ा कपड़ा खरीदा, यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारा, उसके शव को उस वस्त्र में लपेटा और उसे एक कब्र में रख दिया जिसे शिला को काट कर बनाया गया था, और फिर कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर टिका दिया। मरियम मगदलीनी और योसेस की माँ मरियम देख रही थी कि यीशु को कहाँ रखा गया है। मरकुस अध्याय 16। सब्द का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलीनी, सलोमी और याकूब की माँ मरियम ने यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह सूरज निकलते ही वे कब्र पर गई। वे आपस में कह रही थी,
हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन सरकाएगा।
फिर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि वह बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटा हुआ है। फिर जब वे कब्र के भीतर गईं तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे सहम गईं। फिर युवक ने उनसे कहा,
डरो मत, तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। इस स्थान को देखो जहाँ उन्होंने उसे रखा था। अब तुम जाओ और उसके शिष्यों तथा पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले ही गलील जा रहा है, जैसा कि उसने तुमसे कहा था वह तुम्हें वही मिलेगा।
तब भय और अचरज में डूबी वे कब्र से बाहर निकलकर भाग गईं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वे बहुत घबराई हुई थी। सप्ताह के पहले दिन प्रभात में जी उठने के बाद वह सबसे पहले मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट हुआ, जिसे उसने 7 दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाया था। उसने यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे विलाप कर रहे थे, जाकर बताया। जब उन्होंने सुना कि यीशु जीवित है और उसने उसे देखा है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसके बाद उनमें से 2 के सामने जब वे खेतों को जाते हुए मार्ग में थे, वह एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने लौटकर औरों को भी इसकी सूचना दी, पर उन्होंने भी उनका विश्वास नहीं किया। बाद में जब उसके 11 शिष्य भोजन कर रहे थे, वह उनके सामने प्रकट हुआ और उसने उन्हें उनके अविश्वास और मन की जड़ता के लिए डांटा, फटकारा, क्योंकि इन्होंने उनका विश्वास ही नहीं किया था, जिन्होंने जी उठने के बाद उसे देखा था। फिर उसने उनसे कहा,
जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। जो मुझमें विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम पर दुष्टात्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पी जाएं तो उनको हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे।
इस प्रकार जब प्रभु यीशु उनसे बात कर चुका तो उसे स्वर्ग पर उठा लिया गया, वह परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। उसके शिष्यों ने बाहर जाकर सब कहीं उपदेश दिया। उनके साथ प्रभु काम कर रहा था। प्रभु ने वचन को आश्चर्य कर्म की शक्ति से युक्त करके सत्य सिद्ध किया।